नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 5 राज्यों में 6,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 7 हवाई अड्डा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उरी में नियंत्रण रेखा के निकट सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। प्रोबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला। उत्तरी गजा के बेतलाहिया में इसराइली हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए। युगांडा के चेप्टेगी जोशुआ और इथोपिया की अल्मेदासी इयायू ने दिल्ली हाफ मैराथन में अपने अपने वर्ग के खिताब जीते। और बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने भारत से पहला क्रिकेट टेस्ट 8 विकेट से जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं, जहां वो 6,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले श्री मोदी आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम को लगभग 4:15 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी के सिग्रा स्टेडियम में कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल में आंखों के विभिन्न रोगों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार की व्यवस्था की गई है।
इस नेत्र चिकित्सालय की स्थापना भारत के अग्रणी आई केयर सर्विस प्रदाताओं में से एक शंकर आई हॉस्पिटल द्वारा प्रमुख निवेशक राकेश झुनझुनवाला परिवार और शंकर आई फाउंडेशन यूएसए के सहयोग से की गई है, जो हर साल सबसे गरीब मरीजों की 30,000 से ज्यादा सर्जरी करने में समर्थ है। इस विश्व स्तरीय आई केयर सुविधा की स्थापना 110 करोड़ रुपए के निवेश से की गई है। सबसे गरीब मरीजों को आई केयर और उपचार उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल क्रॉस सब्सिडाइजेशन मॉडल पर काम करेगा, जिसमें भुगतान करने वाले मरीजों से आई धनराशि का उपयोग जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
संपर्क को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री लगभग 2,870 करोड़ रुपए की लागत वाली वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के विस्तार और नए टर्मिनल भवन के निर्माण तथा संबंधित कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वह आगरा, दरभंगा और बागडोगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव और रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों की वर्चुअल रूप से आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से वाराणसी क्रीड़ा परिसर के पुनर्विकास के दूसरे और तीसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिग्रा स्टेडियम में परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्देश्य एक अत्याधुनिक खेल परिसर तैयार करना है, जहां खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल, खेल विज्ञान केंद्र, विभिन्न खेलों के लिए अभ्यास मैदानों, इंडोर निशानेबाजी रेंज आदि की व्यवस्था होगी। अर्जुन पुरस्कार विजेता और बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि ये प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4 साल के अंदर एनसीयूई बन के तैयार हो गया बनारस जैसी जगह पे, तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जूनियर बच्चों को बोलूंगी कि अब जो है ना, ये स्प्रिंट करने का टाइम है, तेजी से दौड़ने का टाइम है, और जो आपको सुविधा मिल रही है ना, इसका भरपूर फायदा उठाइए और आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करिए। बनारस के लोगों से एक आह्वान है कि प्लीज हमारे स्टेडियम को एकदम साफ रखिए।
बिहार में हाल की बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंचेगी। 7 सदस्यीय टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बताया कि टीम आज और कल प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और 22 अक्टूबर को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने केंद्र से 3,638 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के क्रम में केंद्रीय टीम के सदस्य बाढ़ के कारण बुनियादी ढांचा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को हुए व्यापक नुकसान का आकलन करेंगे। राज्य सरकार ने अपने आंतरिक मूल्यांकन में ग्रामीण सड़कों, पुल पुलियों, सुरक्षा तटबंधों, घरों, स्कूलों और फसलों के बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होने का आकलन किया है। बिहार सरकार ने केंद्र से 3600 करोड़ से भी अधिक की राशि की मांग की है। राज्य सरकार ने 2 किस्तों में बाढ़ प्रभावित परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में 7,000 रुपए की सहायता राशि DBT के माध्यम से वितरित की है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में शहरी भू रिकॉर्ड के लिए सर्वेक्षण पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शहरी भू रिकॉर्ड आधुनिकीकरण में वैश्विक सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को प्रदर्शित करना, अनुकूल तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना और चुनिंदा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक परियोजना तैयार करना है। कार्यशाला में मानकीकरण के अभाव, डाटा सुरक्षा और हितधारकों हेतु क्षमता निर्माण जैसी चुनौतियों पर भी विचार किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल प्रयोक्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी की श्रेणियां शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ओडिशा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, उत्तर प्रदेश दूसरे और गुजरात तथा पुदुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी के साथ साथ नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सरकार जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने के लिए राष्ट्र स्तर पर एक व्यापक अभियान चला रही है। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए देश भर से ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को चुना जाता है जो सरकार के जल समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य और प्रयास कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बारामूला जिले के उरी क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के निकट संदिग्ध गतिविधि के बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। श्रीनगर स्थित चिनार कोर की सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने क्षेत्र में घुसपैठ रोधी संयुक्त अभियान शुरू किया था। सुरक्षा बलों की चेतावनी के बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी की। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। राजस्थान के धौलपुर में कल रात सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना स्लीपर बस और ऑटो रिक्शा में टक्कर के कारण हुई। मृतकों में अधिकतर बच्चे और महिलाएं थीं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस चालक और कंडक्टर की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री ने सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव सहायता कर रहा है। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि खेल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने भारत को दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर मांडविया तिरुवनंतपुरम के कोडियार में उन्नत भारतीय खेल प्राधिकरण गोल्फ कोर्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
स्पोर्ट्स सेक्टर में देश को 1 से 5 क्रम में ले आएंगे और उसके लिए ग्रास रूट टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उसको नर्चर करना। हर देश के हर डिस्ट्रिक्ट में एक खेलो इंडिया सेंटर चलाया जा रहा है और नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा कई टाइप के स्कीम चलाई जा रही है।
डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत में गोल्फ की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस देश में प्रत्येक नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे समाज का शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रोबोवो सुबियांतो ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। 73 वर्षीय श्री प्रोबोवो विश्व की सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश के औपचारिक रूप से 8वें राष्ट्रपति बने हैं। 14 फरवरी को हुए चुनाव में विशेष बलों के पूर्व कमांडर प्रोबोवो सुबियांतो ने लगभग 60% वोट प्राप्त किए थे। गजा के उत्तरी भाग बेतलाहिया में इसराइल के हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। गजा के उत्तरी भाग में पिछले 16 दिन से इसराइली सेना की घेराबंदी के कारण गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। भोजन, पानी और दवाओं की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं ठप हैं। इस बीच इसराइली सेना ने हमास के 70 से अधिक लोगों के मारे जाने के दावे पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि इस संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। दिल्ली हाफ मैराथन में युगांडा के ओलंपिक चैंपियन जोशुआ चेप्टेगी ने पुरुष वर्ग और इथियोपिया की एलएमडीस ईआईयू ने महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन दौड़ भीष्म पितामह मार्ग, लोधी रोड, मथुरा रोड, सी हेक्सोगन, कर्तव्य पथ, रफी मार्ग और संसद मार्ग से होते हुए स्टेडियम परिसर के बाहर समाप्त हुई। मीडिया से बात करते हुए भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि मैराथन का माहौल बहुत ऊर्जावान था और ये फिट इंडिया मूवमेंट का एक आदर्श उदाहरण है।
यहाँ का जो माहौल था और बहुत सारे यंग पीपल यहाँ पे थे, मैंने से यंग दी यंगेस्ट वन वाज 92 ईयर ओल्ड, सो बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल मॉर्निंग रहा और ये हमारी जो फिट इंडिया मूवमेंट है ये उसका ही एक उदाहरण है।
बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने भारत से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 8 विकेट से जीत लिया है। मैच के पांचवें दिन न्यूजीलैंड ने जीत का लक्ष्य 27 ओवर और 4 गेंद में केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले मैच के चौथे दिन कल भारत की टीम दूसरी पारी में 462 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 46 और न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए। दुबई में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज न्यूजीलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। 2016 के बाद पहली बार महिला टी20 विश्व कप में कोई नया विजेता होगा। उधर न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 14 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। थाईलैंड में 23 से 27 अक्टूबर तक होने वाले एएफसी अंडर 17 एशियाई कप क्वालिफायर के लिए 23 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इशफाक अहमद ने टीम की घोषणा की। भारत को ग्रुप डी में रखा गया है। भारत का पहला मैच 23 अक्टूबर को ब्रुनेई दारुसलाम से, 25 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान से और 27 अक्टूबर को मेजबान थाईलैंड से होगा। ओडिशा में अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम भुवनेश्वर के जनता मैदान में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के मुख्यमंत्री सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की स्मृति में मनाया जाता है। देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए भारत 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से 570 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है। इनके अलावा 108 रेलगाड़ियां लातूर, सावंतवाड़ी रोड, नागपुर, पुणे, कोल्हापुर, नांदेड़ और महाराष्ट्र के अन्य स्थानों के लिए संचालित की जा रही हैं। यात्री इन गाड़ियों की पूरी समय सारणी www.enquiry.indianrail.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 10 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 265 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि पराली और कचरा जलाने से वायु गुणवत्ता में और गिरावट आने की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आज कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 5 राज्यों में 6,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 7 हवाई अड्डा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उरी में नियंत्रण रेखा के निकट सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। प्राबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला। उत्तरी गजा के बेतलहिया में इसराइली हमले में 70 से अधिक लोग मारे गए। युगांडा के चेप्टेगी जोशुआ और इथोपिया की अलेमादिस ईआईयू ने दिल्ली हाफ मैराथन में अपने अपने वर्ग के खिताब जीते। और बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ने भारत से पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 8 विकेट से जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।